नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में तत्काल तनाव कम करने की आवश्यकता पर ओमान, जॉर्डन, फ्रांस और मलेशिया के नेताओं से बातचीत की। खाड़ी क्षेत्र में कई हत्याओं, हवाई हमलों और महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचनाओं पर हमलों के बाद तनाव बढ़ा। भारत ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है क्योंकि उसका गुप्त परमाणु प्रसार का इतिहास रहा है। लियोनेल मेसी आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर बने। और फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और ईशा रानी बरुआ महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सभी से पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और तत्काल तनाव कम करने पर बल दिया। वे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में ऊर्जा अवसंरचना पर हमले निंदनीय हैं और इनसे अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने ओमान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की कड़ी निंदा की। श्री मोदी ने भारतीय नागरिकों सहित हजारों लोगों की सुरक्षित वापसी में ओमान और जॉर्डन के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री को आगामी त्यौहार हरी राया ईद उल फितरी की शुभकामनाएं दी। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हाल के हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इन्हें बेहद चिंताजनक बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन हमलों से पहले ही अनिश्चित वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में और अधिक अस्थिरता का खतरा है। ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों द्वारा ऊर्जा सहायता की मांग की जा रही है।
बांग्लादेश से, श्रीलंका से, मालदीव से हमारे पास अनुरोध आया है कि हम उनकी मदद करें। बहुत सारे देशों के साथ हमारे पहले से ही ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी चल रही है और अभी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने मांगा है मदद, बांग्लादेश की पूर्ति की जा रही है और अन्य देशों का जो भी अनुरोध है उसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं।
अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना क्रूर हमलों की निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबाड़ के पाकिस्तान को लेकर बयान पर श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु प्रसार को लेकर पुराना इतिहास रहा है।
जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उनका क्लैंडेस्टाइन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का इतिहास रहा है और इस प्रकार के बयान से वो फिर जग जाहिर हो जाता है कि किस प्रकार इनके क्लैंडेस्टाइन न्यूक्लियर ऑपरेशन के कारण खतरा दुनिया के सामने आता है।
ईरान में फंसे छात्रों पर श्री जायसवाल ने बताया कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी ईरान में चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें कश्मीर की लड़कियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत उनकी हर संभव सहायता करने की कोशिश कर रहा है। अगले कुछ दिनों में इन सभी को स्वदेश वापस लाया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि ईरान को आज फिर से सबसे बड़े हमले का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह युद्ध अमेरिका की शर्तों पर समाप्त होगा। वाशिंगटन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए हेक्सेथ ने संघर्ष को लंबे युद्ध में बदलने की आलोचना को खारिज किया। संयुक्त अरब अमीरात ने पूंजी प्रवाह पर प्रतिबंध लगाने की खबरों को खारिज करते हुए इन्हें गलत और भ्रामक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात का यह स्पष्टीकरण इन अटकलों के बाद आया है कि विदेशी निवेशकों को पैसा निकालने या देश छोड़ने पर पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार डॉक्टर अनवर गार्गिश ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए ऐसे संवेदनशील समय में इन भ्रामक खबरों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी है। श्रीलंका में ऊर्जा मंत्री कुमारा जयकोड़ी के खिलाफ संसद में 10 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। संसदीय कार्य समिति ने आज विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव में श्री जयकोड़ी पर प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि श्री जयकोड़ी नारोचोलाई में लक विजय कोयला बिजली संयंत्र के लिए पर्याप्त और उत्तम गुणवत्ता की कोयला आपूर्ति सुनिश्चित कराने में विफल रहे। ये संयंत्र श्रीलंका की बिजली उत्पादन नेटवर्क का प्रमुख घटक है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में हत्याओं, हवाई हमलों और महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों की घटनाओं के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसराइल लेबनान के भीतर एक तक हवाई हमले कर रहा है। लेबनान में मध्य बेरूत के बस्ता और जुकाक अलबलात इलाकों को निशाना बनाया गया। इसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से तत्काल युद्ध विराम की अपील के बावजूद इजरायली सेना लेतानी नदी की ओर बढ़ रही है। एक समन्वित कूटनीतिक प्रतिक्रिया के तहत 12 अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने रियाद में संयुक्त बयान जारी कर नागरिक बुनियादी ढांचे पर ईरानी मिसाइल हमलों की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला देते हुए इन देशों ने आत्मरक्षा के अपने अधिकार पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रीय हस्तक्षेप और समुद्री खतरों को समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि स्थिरता के लिए संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है। इसे बढ़ते संकट को नियंत्रित करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर खतरे को देखते हुए वायु रक्षा प्रणालियां हाई अलर्ट पर है। एक रिपोर्ट।
सऊदी अरब की वायु रक्षा प्रणाली ने महत्वपूर्ण तेल निर्यात बंदरगाह यानबू को निशाना बनाकर दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। यानबू का महत्व होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही बाधित होने के कारण काफी बढ़ गया है। बंदरगाह से तेल निर्यात लगभग 19 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है, जो सामान्य स्तर से काफी अधिक है। अधिकारियों ने बताया है कि एक ड्रोन ने सामरेफ रिफाइनरी परिसर को निशाना बनाया, जो सऊदी अरामको और एक्सॉन मोबिल का संयुक्त उद्यम है। ये हमला लाल सागर के ऊर्जा गलियारों की बढ़ती असुरक्षा को उजागर करता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार से आज शाम पर फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया संघर्ष और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आज संयुक्त अरब अमीरात की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी से मुलाकात भी की। उन्होंने पश्चिम एशिया में संघर्ष से जुड़े ताजा घटनाक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार का आभार व्यक्त किया। बांग्लादेश में ईद के अवसर पर एक सप्ताह के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इससे लोगों का राजधानी ढाका से पलायन शुरू हो गया है। इस अवसर पर अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े उपाय किए हैं, जिनमें पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना, सीसीटीवी निगरानी और मोबाइल अदालतें शामिल है। साथ ही व्यस्त दिनों में भीड़भाड़ कम करने के लिए राजमार्गों पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लियोनेल मेसी आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले विश्व के दूसरे पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि कल फ्लोरिडा में कॉनकेकैफ चैंपियंस कप के दूसरे चरण में इंटर मियामी क्लब फुटबॉल और नैशविले सॉकर क्लब के बीच 1-1 से ड्रॉ हुए मुकाबले के दौरान हासिल की। अर्जेंटीना के खिलाड़ी और इंटर मियामी के कप्तान मेसी ने अपने प्रतिद्वंदी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ 900 गोल करने वाले पुरुष खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज तन्वी शर्मा, मालविका बंसोड और ईशरानी बरुआ महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, जबकि अर्जुन मदाथिल रामचंद्रन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में तन्वी शर्मा ने अनमोल खरक को हराया। ईशरानी बरुआ ने कनाडा की खिलाड़ी वेन यू झांग को और मालविका बंसोड ने मलेशिया की वोंग लिंग चंग पर जीत दर्ज की। पुरुष डबल्स में अर्जुन और हरिहरन ने स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डन और एडम प्रिंगल को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में तत्काल तनाव कम करने की आवश्यकता पर ओमान, जॉर्डन, फ्रांस और मलेशिया के नेताओं से बातचीत की। खाड़ी क्षेत्र में कई हत्याओं, हवाई हमलों और महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचनाओं पर हमलों के बाद तनाव बढ़ा। भारत ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है क्योंकि उसका गुप्त परमाणु प्रसार का इतिहास रहा है। लियोनेल मेसी आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर बने और फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और ईशरानी बरुआ महिला सिंगल्स की क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।